واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. دس مرتبہ درود شریف پڑھ لو. ایک حدیث سنیے، اللہ تعالی کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گئے تو قیامت کے دن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس کی سفارش کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کر دے اس کو جنت انشاءاللہ مل جائے گی. اسی لیے آج اس مبارک مجلس میں آپ نے 10 مرتبہ درود پڑھا، اب کل صبح میں، کل شام میں اور موت تک روز صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا. کہو انشاءاللہ. ایک تو ہم صبح شام کی تسبیح 3 پڑھتے ہیں، اس میں درود پاک کی تسبیح بھی آتی ہے، لیکن یہ اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اسپیشل 10 مرتبہ درود کی عادت بنا لو کہ صبح میں 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ، تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، اور حضور کی سفارش مل گئی تو ہماری جنت پکی ہو جائے گی. مسلمان بھائیوں، اس وقت جو حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں اس میں سلامتی، سیکیورٹی، حفاظت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ ہماری ذات کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے گھر بار کی، ہماری مسجد مدرسے اور دینی اداروں کی حفاظت ہوئے، یہ اس وقت کے حالات میں بہت امپورٹنٹ، بہت اہم، بہت ضروری چیز ہے. اس لیے مسلمانوں کو بہت دھیان رکھنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت جواب داری سے رہنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہماری جان کا خطرہ، ہمارے مال کا خطرہ، ہمارے گھر بار کا خطرہ، ہماری مسجد مدرسے دینی اداروں کا خطرہ، ایسا کوئی کام ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ اس وقت بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا تھا، سب نیت اور وعدہ کرو کہ عمل کرو گے. پیارے نبی جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فرض نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لے وے تو دوسری نماز تک اللہ تعالی اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے. جو مسلمان فرض نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لے وے تو دوسری نماز تک اللہ تعالی اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے. جیسے اب نماز فجر کی آئے گی تو فجر کی نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لو تو ظہر تک اللہ حفاظت کریں گے. ظہر پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لی، عصر تک اللہ حفاظت کریں گے. عصر پڑھ کے آیت الکرسی پڑھی، مغرب تک اللہ حفاظت کریں گے. غرض جس نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے دوسری نماز تک اللہ تعالی خود ہماری حفاظت کریں گے. اس لیے کتنا اچھا سسٹم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مسلمان نماز پڑھے، آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. کتنی بڑی بات ہو جائے گی. آج سلامتی، سیکیورٹی، حفاظت بہت بھاری چیز ہو گئی ہے، بہت نازک چیز ہو گئی ہے، بہت مشکل چیز ہو گئی ہے. جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، ایمان کا خطرہ. اور میں آپ کو بتلاؤں دینی بھائیوں، جان اور مال کے خطرے سے بھی بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے. سب سے بڑی ڈرنے کی چیز اس وقت پر ایمان کی سلامتی ہے، ایمان کی حفاظت ہے. تو ہمیں بہت سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں گاؤں میں، جس کو ہم گاؤں کا مکتب کہتے ہیں، जो हमारे वडिलों ने बड़े बूढ़ों ने चालू किए उसके लिए माशाल्लाह इमारत बिल्डिंग बनाई और उसमें बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इन बच्चों को मदरसे में मकतब में अढ़ी कल्ला तीन कल्ला इतना टाइम मिलता है, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो इतने टाइम के अंदर हमारे बच्चों को मदरसे में सबसे पहली चीज ईमान और अकीदा इनका मजबूत हो जावे, ये सबक पहले नंबर पर मिलना चाहिए। हर गांव में, हर मकतब में, हर मदरसे में इस वक्त ईमान और अकीदे की हिफाजत उसका सबक सबसे पहले मिलना चाहिए। उसके लिए एक काम मदरसे में करो और एक काम घर के अंदर करो। इसलिए कि 11-12 साल के बच्चे हो जाते हैं, मदरसा छोड़ देते हैं, फिर घर में रहते हैं, स्कूल जाते हैं। रोजाना मदरसे में 5 मिनट हर क्लास में जुबानी सवाल जवाब, बेटा हमको किसने पैदा किया? बच्चे जवाब दे, अल्लाह ने पैदा किया। मैं आपको सवाल करता हूं, आप जवाब दो ताकि ईमान दिल में ताजा होता जावे। सब बोलो, किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। यूं कहो अदब से, अल्लाह ताला ने। किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। हमको मौत कौन देता है? अल्लाह ताला। हमको रोजी कौन देता है? अल्लाह ताला। हमको तंदुरुस्ती कौन देते हैं? अल्लाह ताला। हमको शिफा कौन देते हैं? अल्लाह ताला। ये बुलवाना चाहिए मदरसे में भी और घर के अंदर भी। घर के अंदर इसलिए कि जिस तरह बच्चों में ईमान और अकीदा मजबूत हो, इसी तरह बड़ों का ईमान और अकीदा भी मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। वजह मैं आपको बतलाऊं, ये इंटरनेट व्हाट्सएप इस वक्त सारी दुनिया की बुराई और खराबी का छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये दिखने में कितना छोटा है लेकिन सारी दुनिया की गंदगी इसके ऊपर मिलेगी। पहले क्या होता था, जब मैं और आप छोटे थे तो तूफान मस्ती करे तो माँ बाप घर में बंद कर देवे, रूम में खोल देवे, घर में पूर देवे, तो कहा ये सलामत रहेगा। लेकिन अब तो रूम में बंद करो तो और ज्यादा बिगड़ेगा, इसीलिए कि रूम में बैठा है और नेट के जरिए पूरी दुनिया में, इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया में है। अब रूम में बंद किया तो फुल टाइम वो अंदर नेट पर, चैट पर, डेट पर लगा रहेगा। और इसमें ईमान को खराब करने वाली, अखलाक को बिगाड़ने वाली बहुत सारी बातें आती है। इसलिए अपने घर में भी ईमान का चर्चा करने की जरूरत है। हम घर में बात करते हैं कि भाई घर में नल गलता है, नल बदलने का है, पाइप टूट गया है, पाइप बदलने का है। छोटी छोटी चीज मरम्मत रिपेयर करने की होती है, उसकी हम बात घर में करते हैं, लेकिन ईमान की रिपेयरिंग की बात हम नहीं करते कि हमारा ईमान डैमेज हो गया, हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमारा ईमान टूट फूट रहा है। उसको कैसे मेंटेन करे, कैसी उसकी रिपेयरिंग करे, कैसी उसकी मरम्मत करे, उसकी बात भी घर में करो। इसीलिए घर में भी सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े लोग भी आपस में 5-10 मिनट रोज बात होनी चाहिए। हमको पैदा करने वाले अल्लाह, हमको जिंदगी देने वाले अल्लाह, हमको शिफा देने वाले अल्लाह, हमको रोजी देने वाले अल्लाह, और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी किताब का कुरान मजीद हमारी किताब। एक सच्ची बात मैं आपको बतलाऊं, कुछ दिन पहले बनासकांठा इलाके में गुजरात की उस साइड में सफर में गया हुआ था। हमारे बहुत सारे मौलाना लोग मिलने आए, जो छोटे 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 गांव में बच्चों को बड़ी कुर्बानी के साथ पढ़ा था। मैंने उनको कारगुजारी ली, उनसे अजीब सुनाई कारगुजारी। कहने लगे, जवान जवान मुसलमान बच्चियां, जवान जवान मुसलमान लड़के, और उनको हम पूछते हमारे नबी का नाम क्या, तो कहते रामचंद्र जी हमारे नबी का नाम। उनको पूछा हमारे मजहब की किताब कौन सी, तो कहते हैं गीता हमारे धर्म की किताब है। ऐसे जवाब वो देते, तो मेरे दिल पर इतना असर हुआ, ए अल्लाह ये मुसलमान बच्चे ऐसा जवाब देते, इनको दीन की तालीम ही नहीं मिली कि कुरान हमारी किताब है, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे खुदा अल्लाह है, ये तालीम ही नहीं मिली कि ये मुसलमान बच्चे ऐसा जवाब दे, वो भी जवान जवान बच्चे, जवान जवान लड़कियां। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, इस वक्त जान का खतरा उससे भी बड़ा खतरा हमारे ईमान का है, हमारे इस्लाम का है, हमारे दीन का है। इसलिए प्यारे आका ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जद्दीदो ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को ताजा करो, ईमान को ताजा करो, जद्दीदो ईमानकुम। हालांकि जब हुजूर फरमा रहे तो सहाबा है सामने, और सहाबा का ईमान तो कितना पावरफुल था, लेकिन उनके सामने हुजूर फरमा रहे जद्दीदो ईमानकुम। मुझे ये लगता है कि हमारे प्यारे नबी जी ने आज के हालात अल्लाह ने दिखाए, और उसकी रोशनी में हुजूर ने फरमाया कि अपने ईमान को ताजा करो, अपने ईमान को नया करो, जद्दीदु ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को नया करो, ताजा करो। तो सहाबा ने पूछा, कैफनु जद्दीदु ईमानना, हम अपने ईमान को ताजा कैसे करेंगे, हमारे ईमान को फ्रेश कैसे करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, उससे तुम्हारा ईमान ताजा बनेगा, तुम्हारा ईमान नया बनेगा। इसलिए रोजाना कलीमे तैयबा पढ़ना चाहिए। मैं मकतब के उस्तादों को कहता हूं कि बच्चों को रोज कलीमे तैयबा और कलीमे शहादत पढ़ाओ, रोज पढ़ाओ, कम से कम 3 मरतबा पढ़ाओ। आप भी मेरे साथ पढ़ो ताकि हमारा ईमान ताजा हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, اور دوسرا کلمہ شہادت, اس کا نام کلمہ طیبہ اور دوسرا کلمہ شہادت. کلمہ شہادت بھی روز تین مرتبہ پڑھاؤ, چاہے قرآن کی جماعت کا بچہ ہو چاہے الف بے کا بچہ ہو, ہر بچے کو ہر بچی کو اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت کی انگلی کے ساتھ پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ گھر میں بھی, صرف مدرسے میں نہیں, گھر میں بھی کھانا کھانے کے لیے سب جمع ہو. ہمارے یہاں ابھی تک یہ سسٹم ہے, سب ساتھ مل کے کھانا کھاتے, یہ نبی جی والا طریقہ, یہ اسلامی طریقہ ہے, سب ساتھ بیٹھ کے کھاوے. تو کھانا کھانے بیٹھو, ایک منٹ کا عمل ہے, تین مرتبہ کلمہ طیبہ, تین مرتبہ کلمہ شہادت پڑھو, بڑے چھوٹے بوڑھے جوان سب کا ایمان تازہ ہو جائے. اس وقت پر اپنے ایمان کو تازہ کرنا یہ بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری. یہ پہلی چیز ہو گئی ایمان کی سلامت, عقیدے کی سلامت. دوسری چیز یہ ہے کہ دینی ضروری مسئلے مسائل, دینی ضروری قانون, یہ سیکھنا مکتب مدرسے میں بھی ہو اور بڑوں کے اندر بھی ہو. ہمارے یہاں مدرسے میں مسئلے پڑھاتے ہیں لیکن بچپن کے پڑھے ہوئے پچپن میں کمزور ہو جاتے ہیں, آدھے مسئلے لوگ بھول جاتے ہیں, یاد نہیں رہتے ہیں. حالانکہ پاکی ناپاکی کے مسئلے, نماز کے مسئلے, یہ بہت امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. اس لیے مسئلے مسائل اس کو بھی سیکھنے سکھانے کا بہترین نظام ہونا چاہیے. بچپن میں بچوں کو وضو, غسل, طہارت, پاکی ناپاکی یہ سکھلاؤ, اور گھروں کے اندر بھی یہ مسئلے مسائل, اور مسجد میں بھی ہفتے میں ایک دن عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد مسئلے مسائل کا حلقہ بناؤ جس میں ضروری مسائل سیکھنے چاہیے, سکھانے چاہیے. یہ تو ہم لوگوں میں جب جائیں گے ملیں گے تو پتہ چلے گا. بہت سال پہلے کی بات ہے, ایک نوجوان شادی کی رات, رخصتی کی رات, ایک بجے رات کو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا. میں نے پوچھا, بھائی آج رخصتی کی رات ایک بجے تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے آیا, کیا بات ہے؟ اس نے مجھے سوال کیا, بہت دکھ بھی ہوا خوشی بھی ہوئی. سوال بیچارہ وہ یوں کرتا ہے کہ آج رات بیوی کے ساتھ میں گزاروں گا تو صبح میں غسل کروں گا تو کیسے کروں گا, کیسے غسل کروں گا, مجھے آپ بتاؤ. مجھے خوشی اس پر ہوئی کہ وہ پوچھنے آیا, دکھ اس پر ہوا کہ جوان ہو گیا لیکن اس کو پاکی کا غسل کیسے کرنا وہ بیچارے مسلمان کو طریقہ معلوم نہیں. دینی بھائیوں, میں تو یوں کہتا ہوں, ہم مکان بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, شاندار باتھ روم بناتے ہیں, شاور ایک سے ایک لگاتے ہیں, اور اب تو باتھ ٹب لگاتے ہیں. یہ سب لگاؤ, حلال پیسے دیے ہیں اللہ نے تو, لیکن اس سے زیادہ یہ سیکھو کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے, کیسے صحیح غسل کریں گے, کیسے ناپاکی کو دور کریں گے. جتنا ہم دھیان سے
बाथरूम बनाते हैं, कितने ध्यान से पाकी नापाकी के मसले सीखो, गुसल का तरीका सीखो, ये इस वक्त बहुत जरूरी है। बहुत से लोग वजू करते हैं आजू बाजू में, तो मुझे तो शक ले जाता है कि बेचारे का वजू हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह वो वजू करते हैं कि फटाफट किया ही किया, ये सूखा रह गया ये सूखा रह गया, और इधर बात कर रहे हैं उधर बात कर रहे हैं, वजू भी हो रहा है और उठ के चले भी गए, और बात तो कमाल कर देते हैं कि मोबाइल पर बात करते करते वजू कर डालते हैं, अल्लाह नबी कैसा उनका वजू हो जाता है। तो ये जो मसाइल है, और मसाइल में भी वजू, पाकी नापाकी, गुसल, ये बहुत जरूरी मसले है, वो हमारे मकतब मदरसे में भी हो और मुसलमानों में बड़ों के अंदर भी हो, इसकी खास फिक्र करने की जरूरत है। तीसरी चीज, प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत, हुजूर की मुबारक जिंदगी, ये पढ़ना मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। हम नात शरीफ सुनते हैं, नात में हुजूर की सीरत पाक के कुछ शेर सुन लेते, नहीं पूरी सीरत पढ़ो, पूरी सीरत पढ़ाओ। देखो गुजराती में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भाषा भी तुम समझते हो, उसमें सीरत पाक की किताब मिलती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये पढ़नी ही चाहिए, हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, और मदरसों में मकतब में बच्चों को सीरत की तालीम मिले, और मस्जिद के अंदर भी सीरत की किताब सुनानी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, कहाँ हुजूर की कब्र मुबारक है, हुजूर की उम्र कितनी हुई, हुजूर की जिंदगी कैसी गुजरी, पूरी हुजूर की जिंदगी सीरत पाक में मिलेगी, वो हमें मालूम होना चाहिए। आज मुसलमान को महात्मा गांधी जी की सीरत मालूम है कि इस साल 151 साल हो गए उनकी पैदाइश के, क्योंकि गांव गांव सरकार ने बोर्ड लगाए इसलिए मालूम है, लेकिन प्यारे नबी जी की पैदाइश के कितने साल हुए, प्यारे नबी जी की उम्र कितनी हुई, प्यारे नबी जी के अखलाक कैसे थे, ये सीरत पाक है, वो हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, मकतब मदरसे में पढ़ाना चाहिए, ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है। मैं आप सबको पूछूं, इतना बड़ा मजमा है, किसी का इंसल्ट नहीं करना और किसी से वन बाय वन जवाब भी नहीं चाहिए, मैं आपके दिल से सवाल करता हूं, आप खुद अपने दिल में जवाब दो, आप में से कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ी है, आप खुद अपने दिल को सवाल करके चुपचाप दिल को जवाब दे दो, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत मुबारक पूरी पढ़ी है। हालांकि हुजूर के एहसान हम उनके गुलाम हैं, हम उनके उम्मती हैं, उन्होंने हमको जन्नत का रास्ता बताया, उन्होंने हमको अल्लाह से मिलाया, तो हमें उनकी सीरत पढ़नी चाहिए। कुछ मुसलमानों ने, बड़े लोगों ने अभी सीरत कंपटीशन शुरू किया है, और भी सीरत कंपटीशन ओनली फॉर नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिमों के लिए, और उसमें उनको 4 महीने का टाइम देते हैं, और मसलन गुजरात में है तो गुजराती में सीरत की किताब देते हैं, और 4 महीने उनको कहते हैं वाचो, फिर 4 महीने के बाद एग्जाम होगा, फिर एग्जाम में जो फर्स्ट लाएगा उसको 50,000 रुपये इनाम, सेकंड नंबर वालों को 40,000 रुपये इनाम, ऐसे बड़े बड़े इनाम की ऑफर रखते हैं। ऐसे एक प्रोग्राम में मुझे दावत दी, मैं गया, 1000 के करीब, 1000 से ज्यादा हिंदू बुद्ध ईसाई लड़के लड़कियों ने उसमें एडमिशन लिया, उनको मुफ्त किताब पहुंचा दी, अपने अपने घर पर वो पढ़ते रहे। फिर उसमें एग्जाम की तारीख पर उनको बुलाया तो 600 से ज्यादा एग्जाम देने के लिए आए, और एग्जामिनर के अंदर ऐसे मौलाना को बिठाया जो किसी स्कूल में टीचर है प्रोफेसर है, ऐसों को बिठाया। फिर एक बड़ा प्रोग्राम किया, मैं आपको यकीन के साथ कहूं 10-10 पेज फुल स्क्रिप्ट उन्होंने जवाब लिखे सप्लीमेंट्री, 10-10 पेज में फुल आगे पीछे। और जो मौलाना लोगों ने उनकी सप्लीमेंट्री देखी उनको मैंने प्रोग्राम से पहले पूछा कि कैसे जवाब लिखे, तो कहने लगे कि मुफ्ती साहब अगर ऊपर नाम होकर न पढ़े कि किसने ये सप्लीमेंट्री जवाब लिखा है और फिर अंदर डायरेक्ट पढ़े तो हमें ये लगता है कि किसी मुसलमान आलिम दीन ने ये सप्लीमेंट्री लिखी हुई है, ऐसा लगता है। हालांकि वो सब नॉन मुस्लिम और उन्होंने हुजूर की सीरत पढ़ी पैसों की लालच में, लेकिन इतनी डीप में जाकर के पढ़ी कि बेहतरीन जवाब लिखे और 600 में से फर्स्ट नंबर पर एक मेडिकल कॉलेज की लड़की का नंबर आया और उसको 50,000 रुपये इनाम मिले। उसको 10 मिनट बोलने के लिए स्टेज पर बुलाया तो उसने हुजूर की सीरत पर इतना अच्छा बयान दिया, हुजूर के अब्बा कौन दादा कौन बेटे कितने बेटी कितनी हुजूर की फूफी कितनी, हुजूर की पूरी डिटेल 10 मिनट में उसने धड़ाधड़ बयान कर दी। मैं तो एकदम सरप्राइज ये था, ए अल्लाह हमारे मुसलमानों को मालूम नहीं और इन लोगों ने हुजूर की सीरत पर इतना रिसर्च कर लिया। इसीलिए मैं आप सबको दावत देता हूँ जिंदगी में एक मरतबा अपने प्यारे नबी जी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ो। छोटी सी किताब ले लो, बड़ी नहीं पढ़ सकते तो, या ये कि आपको सीरत के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बयानात भी है वो सुन लो गाड़ियों में मोबाइल पर, लेकिन हुजूर की सीरत मुबारका हमको मालूम होनी चाहिए। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। और चौथी चीज है सुनन व आदाब, हुजूर की प्यारी सुन्नतें और हुजूर के आदाब ये हमें मालूम होने चाहिए। देखो अभी हम मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद में आने का सुन्नत तरीका क्या है, मस्जिद से बाहर जाने का सुन्नत तरीका क्या है। एक है वो मालूम होना और दूसरा है उसके मुताबिक अमल करना। हर एक अल्लाह को हाजिर रख कर के फैसला करो कितने लोग मस्जिद में सुन्नत तरीके से आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते थे तो पहले जमणा पग दाखिल करते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते थे। अब अपने यहाँ सब मस्जिद में बाहर दुआ लिखी है, सब मस्जिद में तकरीबन कोई मस्जिद ऐसी होगी कि नहीं लिखा, बाकी सब मस्जिदों में दुआ लिखी है, लेकिन आने वाले मजमे में पढ़ते कितने। ये है नबी की सुन्नत का हाल। तो मुसलमान भाइयों नबी की सुन्नत सीखो, नबी का जिंदगी का तरीका अपनाओ, ऐसे खाना ऐसे कपड़े ऐसे मस्जिद में आना ऐसे मस्जिद से जाना। यहाँ तक के मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर नबी के पाक तरीके पर हम कारोबार करेंगे तो अल्लाह उसमें हमें बरकत देंगे, अल्लाह ताला उसमें नुकसान से बचाएंगे और अल्लाह ताला दूसरों पर उसका अच्छा असर डालेंगे। मैंने चाइना की हिस्ट्री पढ़ी, पहली तबलीगी जमात चाइना गई थी 1960 में, اس کے امیر ایک شیخ الحدیث تھے. جب جماعت بھیجی گئی تو بزرگوں نے اس میں انگلش بولنے والے ڈاکٹر انجینئروں کو بھیجا تاکہ انگلش سے کام چلے. وہ جماعت کی کارگزاری چھپی ہے. وہ امیر صاحب شیخ الحدیث انتقال کر گئے. میں نے وہ پوری کارگزاری پڑھی. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہماری جماعت جب چائنا پہنچی 4 مہینے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے تو کہا چائنیز لوگوں کو ہم نے دیکھا 1960 میں. کہا انگلش میں بات کرو تو جواب ہی نہیں دیتے. ایسا لگا کہ انگلش آتی ہے لیکن جواب نہیں دیتے, بولتے ہی نہیں. بہت مشکل سے ہم لوگوں کو ریلوے میں ٹکٹ لینے کی, فلائٹ لوکل ٹکٹ لینے کی, کئی ہوٹل میں رہنا ہو تو اس کا سب بہت مشکل. کا جماعت کا کام کیسے چلا؟ کا وہ جو امیر صاحب شیخ الحدیث تھے وہ عربی بولتے تھے اور وہاں امام لوگوں سے عربی میں بات کرتے, تو قرآن کی عربی بھاشا کے ذریعے سے کام چلا, ورنہ انگریزی کے ذریعے کوئی کام چلا نہیں. قرآن کی زبان سے کام چلا. پھر انہوں نے ایک خاص بات وہ کتاب میں لکھی کہ میں نے یہاں ہسٹری پوچھی کہ چین میں اسلام کیسے آیا, تو وہاں ندی کے بیچ میں ایک قبر وہاں لے گئے کہ یہ صحابی کی قبر ہے, لیکن کتابوں سے پتا چلا کہ وہ تابعی ہے, یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. اب صحابی ہو یا تابعی ہو, حضور کے مبارک زمانے کے قریب کے تھے وہ بزرگ. تھا وہ چائنا آئے اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے, اور انہوں نے چائنا آ کر کے بزنس چالو کیا, تجارت چالو کی, ویپار چالو کیا اور اسلامی طریقے سے چالو کیا. جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, بناوٹ نہیں کرتے. کوئی مال لے کے گیا اور پسند نہیں آیا تو واپس لے لیتے ہیں, پورے پیسے دے دیتے ہیں. اس کو ہمارے یہاں اکالا کہتے ہیں کہ مال واپس لے لو, اس کو پسند نہیں آیا پیسے پورے دے دو. دھوکہ نہیں, بناوٹ نہیں. اب چائنا میں سارے چائنیز ویپاری اور ایک ہی عربی ویپاری, لیکن سارے چینی لوگوں میں وہ زمانے میں بات چلی کہ یہ عربستان کا آیا ہوا ویپاری سچا ہے, دھوکہ نہیں دیتا, بناوٹ نہیں کرتا, کسی کے ساتھ جو ہے فراڈ نہیں کرتا. تو اس کا اتنا اثر ہوا, اتنا اثر ہوا کہ لوگوں نے ان کے پاس آ کے پوچھا آپ کا مذہب کون سا, آپ کا دین کون سا, اور انہوں نے ایمان سیکھا. ایک آدمی مسلمان بنا, دو بنا, 10 بنے, 20 بنے, 50 بنے, اور یوں کرتے کرتے ویپار کے ذریعے سے چائنا کے اندر اسلام چمک گیا اور اسلام کی بنیاد پڑ گئی. میرے ایمان والے بھائیوں, آج غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹ, ہمارا سبند, ہمارا تعلق ویپار کے ذریعے سے ہے, کاروبار کے ذریعے سے ہے, لیور دیور کے ذریعے سے ہے. اگر ہم صحیح صاف ستھرے رہیں گے, ایک دم چوکھے رہیں گے, بناوٹ نہیں, دھوکہ نہیں, جھوٹ نہیں, فریب نہیں, تو یہ چیز ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرے گی اور یہ اسلام کی بہت بڑی دعوت ہوگی. یعنی جو تبلیغ ہم زبان سے نہیں کر سکتے وہ ہمارے اخلاق کیریکٹر کے ذریعے سے ہوگی. آج اس کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اپنی زندگی کا ایک قصہ سنا. ہمارے ڈابھیری کے محتمیم صاحب کے ساتھ لکھنؤ میری اور ان کی ایک جلسے کی دعوت, حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ نے وہاں سیرت صحابہ کے جلسے میں ہم دونوں کو دعوت دی. ہم دونوں احمد آباد ایئرپورٹ پہنچے, 26 جنوری تھی, हाई सिक्योरिटी थी उस दिन चेकिंग। अब जब हम काउंटर पर गए तो टिकट में जरा सा नाम में फर्क आया, क्योंकि इनका नाम बुजुर्ग खानदान से फेमस और एक्चुअल सरनेम उनकी दूसरी, तो हमारे टिकट बनाने वाले एजेंट ने बुजुर्ग नाम से टिकट बनाई थी, तो फ्लाइट में उनको बैठने नहीं दिया। तो मैंने कहा कि हम दोनों वापिस जाएंगे, बड़े आदमी को अकेले छोड़े अहमदाबाद से डाबेल भेजेंगे, हम दोनों वापिस आए। अहमदाबाद स्टेशन पहुंचे अचानक, तो जो ट्रेन आई उसमें बैठना था, तो टीसी से बात, तो टीसी कहने लगा 500 रुपए दे दो और तुम टिकट लेके बैठ जाओ, सेटिंग कर लेंगे। तो मैंने उनको कहा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आभार, आप हमको बिठा रहे, लेकिन पावती बनाओ, ये सेटिंग वेटिंग की बात नहीं। तो मुझे कहने लगे कि सूरत तक मेरी ड्यूटी है, कोई चेकर दूसरा आने वाला नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो ऊपर वाले चेकर से डरता हूँ, तो जरा शौक खा गया। और उसके बाद उसने कहा कि कायदे सर की मैं तुमको पावती बना देता हूँ, एक रुपया भी मुझे ऊपर गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुमने ऊपर वाले की बात कर दी, अब आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना उसको असर हुआ कि वो हमको इत्मीनान से सीट पर बिठाया, पावती कायदे सर की बना करके दी। तो तुम तो अजीब लोग हैं, सेटिंग में मानते नहीं हो। मैंने कहा पावती 1000 रुपए की होगी, वो हम करने तैयार है, 500 वाली सेटिंग हमको नहीं चाहिए। हम सरकार का नुकसान नहीं करते, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो उसके ऊपर बहुत असर हुआ, उसने बहुत असर लिया और बार बार पूछता रहा, कोई सेवा हो तो बताना, आपको नमाज पढ़ना है, मैं चादर धुली हुई आपको दे दूं, आप नमाज भी पढ़ लो, किस तरह। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इस वक्त इस्लामी अखलाक हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली तौर पर आवे, इसकी बहुत जरूरत, बहुत जरूरत, बहुत जरूरत है। तो मैं आपको कह रहा था, एक तो अकीदे और ईमान, दूसरा जरूरी मसले मसाइल, तीसरा अल्लाह के नबी की सीरत पाक, और चौथा सुन्नत और आदाब, और पांचवी चीज नबी जी के प्यारे प्यारे अखलाक हमारी जिंदगी में आवे, और छठी चीज महफूजात। महफूजात का मतलब ये होता है 5 कलमे हमें याद हो, कुरान की सूरतें हमें याद हो, और दुआएं याद हो, दुआएं याद हो। आज कितनी दुआ हमको याद है, देखो टॉयलेट में जाने की दुआ है, टॉयलेट से बाहर निकलने की दुआ है, खाने से पहले की दुआ है, खाने के बाद की दुआ है, सोते वक्त की दुआ है, सोकर उठने की दुआ है, सुबह से लेकर रात तक गिनो तकरीबन एक मुसलमान को 50 दुआ की रोजाना जरूरत पड़ती है। घर से बाहर निकलने की, घर में आने की, पानी पीने की, कपड़े पहनने की, कपड़े निकालने की, गाड़ी पर बैठने की, 50 दुआ की रोजाना मुसलमान को जरूरत पड़ती है। हमको कितनी दुआ याद है। इसलिए नौजवानों, वक्त को बर्बाद मत करो, बैठ के दुआएं याद करो। मैं आपको एक हदीस से मिसाल दूंगा। हदीस पाक में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप टॉयलेट में जाते हो और दुआ नहीं पढ़ोगे तो वहां शैतान आएंगे, शैतान, और वो तुम्हारे 70 के साथ खेलेंगे। हदीस में है ये बात, तुम्हारा 70 खोलोगे तो तुम्हारे 70 के साथ शैतान खेलेगा, उंगली मारेगा, और हमको महसूस नहीं होता, लेकिन हुजूर ने फरमाया है, इसलिए हमारा ईमान है। और उसका असर क्या है कि बगैर दुआ पढ़े हुए हम जाते गंदे गंदे वसवसे आते, गंदे गंदे ख्याल आते, ये शैतान का असर है। अगर दुआ पढ़ के जाओगे तो हमारे और शैतान के बीच में कुदरती एक पर्दा आ जाएगा और शैतान हमारी शर्म की जगह को टच नहीं कर सकेगा, हाथ नहीं लगा सकेगा। इसलिए बगैर दुआ जाओगे शैतान तुम्हारी बॉडी को छेड़ेगा, और दुआ पढ़ के जाओगे सिक्योर रहोगे, सलामत रहोगे, हिफाजत में रहोगे। हर मौके की दुआ पढ़ो। और दूसरी मिसाल दूं मैं आपको, हदीस की बात है इसलिए कह रहा हूं, आदमी अपनी बीवी के साथ जरूरत पूरी करने सोता है तो शैतान अंदर पार्टनर बनता है। हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, और शैतान भी उसमें भागीदार बनता है। अगर दुआ नहीं पड़ी और बीवी के साथ सोए तो शैतान भी अंदर भागीदार हो जाता है, और उसका असर ये होता है कि फिर औलाद में शैतानी असर पड़ता है। इसलिए बीवी के पास जाने से पहले दुआ, अल्लाह के नबी ने बतलाई कि दुआ पढ़ो, और दुआ पढ़ के बीवी के साथ जाओ तो इंशाल्लाह शैतान से बचे रहोगे, औलाद में शैतानी असर नहीं आएगा। इसलिए ये जो दुआएं सोने पहले की, सोने के उठने की, कपड़े पहनने की, ये दुआएं याद करो और पढ़ो, ये बहुत जरूरी। ये मकतब में याद कराते हैं, बड़ी उम्र में भी याद करो। इस मोबाइल को मुसलमान बना डालो, दुनिया भर की गंदी चीजें भरी है, सब डिलीट मारो और अंदर सुन्नत दुआएं करो। टाइम टू टाइम दुआ पढ़ो कॉल करके, कि अभी टॉयलेट में जाने की दुआ कौन सी पढ़ो, बाहर निकलने की कौन सी पढ़ो, और रात को सोते वक्त कौन सी दुआ पढ़ो, उठने की दुआ कौन सी पढ़ो। इसको कहते हैं महफूजा, ये याद होनी चाहिए। तो हमारे मदरसों में, हमारे घरों में ईमान की बातें, मसले मसाइल की बातें, सीरत की बातें, सुन्नत आदाब की बातें, अखलाक की बातें, और कलीमा और मसनून दुआओं का याद करना, ये माहौल बनाना चाहिए। ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। करोगे ये काम अपने घरों के अंदर मुसलमान भाइयों, मैंने बात यहां से शुरू की थी कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हिफाजत का है, सिक्योरिटी का मसला है, ईमान की सलामती, जात और माल जान की सलामती। ईमान की सलामती के लिए मैंने 6 बातें आपको बताई, वो 6 काम करो, और रोज कलीमे तैयबा, कलीमे शहादत अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, घर में भी पढ़ो, उससे ईमान मजबूत और ताजा बनेगा। और जैसा मैंने आपको अमल बतलाया, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह दूसरी नमाज तक हमारी हिफाजत करेंगे। और अभी घर जाके सोने का अमल है, रात को जल्दी सो जाओ। उम्मत के जवानों, रात को देर तक मत बैठे रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईशा के बाद जल्दी जल्दी सो जाओ। हाँ, कोई दीन इल्म की मजलिस है, बैठ सकते हैं, अपनी बीवी को घर में वक्त दे सकते हो। जिस तरह कोई बाहर गांव से मेहमान आया दूर से, उसको थोड़ा वक्त दे सकते हो। बाकी गांव के चौरों पर, रास्तों पर, खाने पीने की रेस्टोरेंटों पर वक्त जाये मत करो। बहुत कीमती तुम्हारा वक्त है, और बहुत नाजुक जमाना है, फितने का जमाना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए रात में जल्दी सो जाओ, फजर में उठ जाओ, तहज्जुद में उठ जाओ, और उठ करके कुरान पढ़ो, तस्बीह पढ़ो। तो अभी घर जाके सोओगे तो हदीस में आता है कि रात को सोते वक्त पर बिस्तर पर बैठ करके आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजेंगे जो पूरी रात तुम्हारे घर की हिफाजत करेगा। सोते वक्त भी आयतुल कुर्सी पढ़ो, और
एक बात सुना करके मजलिस हम पूरी करते हैं, दुआ कर लेते हैं। बताओ आप में से किसको मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाने का शौक है? उंगली उठाओ। मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत में सबको जाना है। तो एक काम करो, एक हदीस सुना। प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत अता कर देंगे, सलामती से जन्नत में भेज देंगे। तो हर नमाज के बाद और रात सोते वक्त पर आयतुल कुर्सी की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह हिफाजत भी होगी और मौत के बाद सलामती से जन्नत मिलेगी। अमल करोगे इसके ऊपर, अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए। बहुत नाजुक जमाना है, बहुत नाजुक जमाना है, बहुत संभल संभल के चलो, जरा भी जज्बात में नहीं आ जाने का, गरम नहीं हो जाने का, मामूली मामूली बातों में बाहें नहीं चढ़ाने की, बहुत संजीदगी से रहो। बहुत नाजुक हालात से उम्मत गुजर रही है और हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा अल्लाह का घर है, सबसे बड़ा सहारा अल्लाह का घर है। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैही, कोई हिफाजत करने वाला नहीं, हिफाजत करने वाले कौन? अल्लाह ताला। हम सबको सब कुछ इज्जत और बरकत देने वाले कौन? बस अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो, अल्लाह को नाराज मत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आफियत से हम सबकी जिंदगी गुजरवाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط فرما. اے اللہ جب دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. پوری دنیا کے ایمان والوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اسلام دین کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مظلوموں کی مدد فرما. ظالموں کو ظلم سے توبہ عطا فرما. ظالموں کو ایمان ہدایت عطا فرما. اسلام اور مسلمانوں کی پورے عالم میں ہر طرف حفاظت فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمیں اسلامی اخلاق عطا فرما. اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرما. جان مال کی حفاظت فرما. حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. دشمنوں کی دشمناوٹ سے حفاظت فرما. شریروں اور فتنوں سے حفاظت فرما. ہماری تمام مسجدوں کی عبادت گاہوں کی مدرسوں کی دینی اداروں کی ہمارے تمام اوقاف کی اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما. امن و امان عدل و انصاف قائم فرما. ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. امت کے جوان بھائیوں کی جوان بیٹیوں کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہم سب پر رحم کرم فضل فرماؤ. رحم کرم فضل فرماؤ. رحم کرم فضل فرماؤ. آج کی مجلسوں کو قبول فرماؤ. آپ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناؤ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اس مجلس میں موجود اپنے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرماؤ. الجھنوں اور تکلیف کو دور فرماؤ. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اللہم آمین. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.